एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तेरे विश्वास है तू न फेरे दयालु यीशु मेरे। दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तू न फेरे दयालु यीशु मेरे। पुकार मेरे ईश्वर एक तू मुझको आंखों में ममता लेकर तुझ तक पहुंच। पुकार मेरे ईश्वर एक तू मुझको आंखों में ममता लेकर दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तुम फेरे दयालु यीशु मेरे। डूब न जाऊं लहरों के नीचे मुझको हरदम खींचे डूब न जाऊं लहरों के नीचे मौत मुझको हरदम खींचे। समझेगा मेरे तू आंसू की भाषा सिर्फ है इतनी सी आशा। दिन रात के तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे सहारा जीवन सागर का तू ही किनारा एक तेरा ही तो है सहारा जीवन सागर का तू ही किनारा गलत राहों पे कदम न बहके खुशबू बन के जीवन बहके दिन रात शाम सवेरे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
यीशु मसीह ने दो उपासक के विषय में एक दृष्टांत कहा था जो हम लूका 18 अध्याय का 9 से 14 में पाते हैं। मसीह ने फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में यह दृष्टांत कहा। कुछ लोग जो अपने आप पर भरोसा करते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ समझते थे। फरीसी मंदिर में उपासना करने जाता है इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि वह क्षमा की आवश्यकता वाला पापी है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को धर्मी समझता है और प्रशंसा जीतने की उम्मीद करता है। वह अपनी उपासना को पुण्य का कार्य मानता है जो उसे ईश्वर के सामने अनुशासित करेगा। साथ ही यह लोगों को उसकी धर्मपरायणता के बारे में उच्च राय देगा। वह ईश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करने की आशा करता है। उसकी उपासना स्वार्थ से प्रेरित होती है और वह आत्म प्रशंसा से भरा हुआ है। वह उसे देखता है, उसे करता है, उसे प्रार्थना करता है, दूसरों से अलग हटकर मानो कह रहा हो, मेरे पास मत आओ क्योंकि मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ। जैसा कि हम पाते हैं लिखा हुआ है यशायाह 65:5 में, वह खड़ा है और अपने आप से प्रार्थना करता है। पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट वह सोचता है कि ईश्वर और मनुष्य उसे समान संतुष्टि के साथ देखते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, वह कहता है, कि मैं अन्य मनुष्यों की तरह नहीं हूँ, लुटेरे, अन्यायी, बेविचारी या यहाँ तक कि इस मनुष्य की तरह भी नहीं हूँ जो कि एक चुंगी लेने वाला है। वह अपने चरित्र का मूल्यांकन परमेश्वर के पवित्र चरित्र से नहीं बल्कि अन्य मनुष्यों के चरित्र से करता है। उसका मन परमेश्वर से हटकर मानवता की ओर चला जाता है। यही उसकी आत्मसंतुष्टि का रहस्य है। वह अपने अच्छे कामों का बखान करता है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा देता हूँ। फरीसी का धर्म आत्मा को नहीं छूता। वह चरित्र में ईश्वर समानता, प्रेम और दया से भरा हृदय नहीं चाहता। वह ऐसे धर्म से संतुष्ट है जिसका संबंध केवल बाहरी जीवन से है। उसकी धार्मिकता उसकी अपनी है, उसके अपने कार्यों का फल और मानवीय मानक द्वारा परखी जाती है। जो कोई अपने आप पर भरोसा करता है कि वह धर्मी है, वह दूसरों को तुच्छ जानता है, जैसे फरीसी दूसरे लोगों के द्वारा खुद का न्याय करता है, वैसे ही वह खुद के द्वारा दूसरों का न्याय करता है। उनकी धार्मिकता का आकलन उनके द्वारा किया जाता है और वे जितने बुरे होते हैं उसके विपरीत वह उतना ही अधिक धर्मी दिखाई देता है। उसकी आत्मधार्मिकता आरोप लगाने की ओर ले जाती है। वह दूसरे लोगों की निंदा करता है जो परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार वह भाइयों पर आरोप लगाने वाले शैतान की आत्मा को प्रकट कर रहा है। इस आत्मा के साथ उसके लिए परमेश्वर के साथ संगति में प्रवेश करना असंभव है। वह ईश्वरीय आशीर्वाद से वंचित होकर अपने घर चला जाता है। चुंगी लेने वाला अन्य उपासकों के साथ मंदिर गया था, लेकिन जल्दी वह उनसे अलग हो गया क्योंकि वह उनकी भक्ति में शामिल होने के योग्य नहीं था। दूर खड़े होकर उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी नहीं उठाई, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा। वह कटु पीड़ा और आत्मघृणा में था। उसे लगा कि उसने ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया है, कि वह पापी और प्रदूषित है। वह अपने आसपास के लोगों से दया की भी उम्मीद नहीं कर सकता था क्योंकि वे उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वह जानता था कि उसके पास ईश्वर के सामने खुद को प्रस्तुत करने के लिए कोई योग्यता नहीं है और पूरी तरह से आत्म निराशा में उसने इस तरह पुकारा, ईश्वर मुझ पापी पर दया करें। उसने खुद की तुलना दूसरों से नहीं की। अपराध बोध से अभिभूत होकर वह मानो परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला खड़ा था। उसकी एकमात्र इच्छा क्षमा और शांति थी। उसकी एकमात्र विनती परमेश्वर की दया थी और वह धन्य हो गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मसीह ने कहा, यह आदमी दूसरे की अपेक्षा धर्मी ठहरा कर अपने घर गया। फरीसी और चुंगी लेने वाले दो बड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग विभाजित होते हैं। उनके पहले दो प्रतिनिधि दुनिया में पैदा हुए पहले दो बच्चों में पाए जाते हैं। कैन ने खुद को धर्मी समझा और वह केवल धन्यवाद की भेंट लेकर परमेश्वर के पास आया। उसने पाप की कोई स्वीकारोक्ति नहीं की और दया की कोई आवश्यकता नहीं मानी, लेकिन हाबिल उसका भाई उस लहू के साथ आया जो परमेश्वर के मेमने की ओर इशारा करता था। वह एक पापी के रूप में आया। उसने खुद को खोया हुआ स्वीकार किया। उसकी एकमात्र आशा परमेश्वर का अनपेक्षित प्रेम था। प्रभु ने उसकी भेंट का सम्मान किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट का सम्मान नहीं किया। आवश्यकता की भावना हमारी गरीबी और पाप की पहचान परमेश्वर के साथ स्वीकृति की सबसे पहली शर्त है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यह हम पाते हैं पहाड़ी उपदेश में जो कि लिखा हुआ है मत्ती 5:3 में। फरीसी और चुंगी लेने वाले द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरित पत्रस के इतिहास में एक सबक है। अपने शुरुआती शिष्यत्व में पत्रस खुद को मजबूत समझता था। फरीसी की तरह अपने स्वयं के आकलन में वह अन्य लोगों जैसा नहीं था। जब मसीह ने अपने विश्वासघात की पूर्व संध्या पर अपने शिष्यों को चेतावनी दी, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, तो पत्रस ने आत्मविश्वास से कहा, यदि सब ठोकर खाएंगे तो भी मैं नहीं। यह लिखा है मरकुस 14:27-29 में। पत्रस अपने खतरे को नहीं जानता था। आत्मविश्वास ने उसे गुमराह किया। उसने खुद को प्रलोभन का सामना करने में सक्षम समझा, लेकिन कुछ ही घंटों में परीक्षा आ गई और साफ और शपथ के साथ उसने अपने प्रभु को अस्वीकार कर दिया। जब मुर्गे की बांग ने उसे यीशु मसीह के शब्द याद दिलाए, तो वह जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उसे आश्चर्यचकित और स्तब्ध हो गया। जब वह उठकर अपने स्वामी की ओर देखने लगा, उस समय मसीह ने पत्रस की ओर देखा और उस दुखी नजर के नीचे जिसमें उसके प्रति करुणा और प्रेम का मिश्रण था, पत्रस ने खुद को समझा। वह बाहर गया और फुट फुट कर रोया। मसीह की उस नजर ने उसका दिल तोड़ दिया। पतरस निर्णायक मोड़ पर आ गया था और उसने अपने पाप का कड़वे ढंग से पश्चाताप किया। वह अपने पश्चाताप और अफसोस करने में चुंगी लेने वाले की तरह था और चुंगी लेने वाले की तरह ही उसे दया मिली। मसीह की नजर ने उसे क्षमा का आश्वासन दिया। अब उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। फिर कभी भी वह पुराने घमंड भरे दावे नहीं दोहराए गए। मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद 3 बार पतरस की परीक्षा ली। उसने कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने अब अपने आप को अपने भाइयों से बड़ा नहीं समझा। उसने उससे अपील की जो उसके हृदय को पढ़ सकता था। उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। लिखा है यूहन्ना 21:15-17 में। फिर उसे अपना काम सौंपा गया। उसे एक ऐसा काम सौंपा गया जो अब तक उसके लिए जितना बड़ा और नाजुक था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। मसीह ने उसे भेड़ों और मेमनों को चराने का आदेश दिया। इस तरह से उन आत्माओं को अपने काम पर सौंपकर जिनके लिए उद्धारकर्ता ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मसीह ने पतरस को अपनी बहाली में भरोसे का सबसे मजबूत सबूत दिया। एक बार बेचैन, घमंडी, आत्मविश्वासी शिष्य अब शांत और पश्चातापी हो गया था। इसके बाद से उसने आत्मत्याग और आत्म बलिदान में अपने प्रभु का अनुसरण किया। वह मसीह के दुखों का भागीदार था और जब मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो पतरस उसकी महिमा का भागीदार होगा। यह हम आश्वासन बाइबल में पाते हैं। वह बुराई जिसके कारण पतरस का पतन हुआ और जिसने फरीसी को परमेश्वर के साथ संवाद करने से रोक दिया, आज हजारों लोगों के लिए विनाश का कारण बन रही है। परमेश्वर के लिए इतना अपमानजनक या मानव आत्मा के लिए इतना खतरनाक कुछ भी नहीं है जितना कि घमंड और आत्मसंतुष्टि। सभी पापों में से यह सबसे निराशाजनक, सबसे लाइलाज है। पतरस का पतन तत्काल नहीं था बल्कि धीरे धीरे हुआ। आत्मविश्वास ने उसे इस विश्वास की ओर अग्रसर किया कि वह बचा लिया गया है और कदम दर कदम नीचे की ओर बढ़ता गया जब तक कि वह अपने स्वामी को अस्वीकार नहीं कर सका। हम कभी भी सुरक्षित रूप से खुद पर भरोसा नहीं कर सकते या स्वर के इस तरफ महसूस नहीं कर सकते कि हम प्रलोभन के खिलाफ सुरक्षित हैं। जो लोग उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, चाहे उनका धर्म परिवर्तन कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उन्हें कभी भी यह कहना या महसूस करना नहीं सिखाया जाना चाहिए कि वे बचा लिए गए हैं। यह भ्रामक है। हर किसी को आशा और विश्वास को संजोना है, तब भी हम प्रलोभन की पहुंच से परे नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन घोषित करता है, बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे और श्वेत किए जाएंगे और जांचे जाएंगे। यह हम पढ़ते हैं दानियल 12:10 में। केवल वही जो परीक्षा को सहन करता है उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। यह प्रतिज्ञा हम याकूब की पत्री 1:12 में पाते हैं। जो लोग मसीह को स्वीकार करते हैं और अपने पहले भरोसे में कहते हैं मैं बचा हुआ हूँ, वे खुद पर भरोसा करने के खतरे में हैं। वे अपनी कमजोरियों और ईश्वरीय शक्ति की निरंतर आवश्यकता को भूल जाते हैं। वे शैतान की चालों के लिए तैयार नहीं होते हैं और प्रलोभन में आकर पतरस की तरह बहुत से लोग पाप की बहुत गहराई में गिर जाते हैं। हमें चेतावनी दी गई है, जो सोचता है कि वह स्थिर है वह सावधान रहे कि कहीं गिर ना जाए। 1 कुरिन्थियों 10:12 में यह लिखा है। हमारी एकमात्र सुरक्षा स्वयं पर निरंतर अविश्वास और मसीह पर निर्भरता में है। पतरस के लिए अपने चरित्र के दोषों को जानना और मसीह की शक्ति और अनुग्रह की आवश्यकता को समझना आवश्यक था। प्रभु उसे परीक्षण से नहीं बचा सकते थे, लेकिन वे उसे हार से बचा सकते थे। यदि पतरस मसीह की चेतावनी को स्वीकार करने के लिए तैयार होता तो वह प्रार्थना के प्रति जागता रहता। वह डर और कांपते हुए चलता ताकि उसके पैर ठोकर न खाए और उसे ईश्वरीय सहायता मिलती ताकि शैतान को जीत ना मिल सके। पतरस आत्मसंतुष्टि के कारण ही गिरा था और पश्चाताप और अपमान के कारण ही उसके पैर फिर से स्थापित हुए। मसीह ने परमेश्वर की विरासत को वापस खरीदने के लिए मनुष्य को एक और परीक्षा देने के लिए अपना टूटा हुआ शरीर अर्पित किया, इसलिए वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में भी सक्षम है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25 में हम यह पाते हैं। अपने बेदाग जीवन, अपनी आज्ञाकारिता, कलवरी के क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा मसीह ने खोई हुई जाति के लिए विनती की और अब हमारे उद्धार के कप्तान एकमात्र याचिकाकर्ता के रूप में हमारे लिए विनती नहीं करते बल्कि एक विजेता के रूप में अपनी जीत का दावा करते हैं। उनकी भेंट पूरी हो चुकी है और हमारे मध्यस्थ के रूप में वे अपने स्वयं के नियुक्त कार्य को अंजाम देते हैं। परमेश्वर के सामने अपनी बेदाग योग्यताओं और अपने लोगों की प्रार्थनाओं, स्वीकारोक्ति और धन्यवाद से भरा धूपदान रखते हैं। उनकी धार्मिकता की सुगंध से सुगंधित ये एक मीठी सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। भेंट पूरी तरह से स्वीकार्य है और क्षमा सभी अपराधों को ढक देती है। मसीह ने खुद को हमारा विकल्प और जमानत बनने का वचन दिया है और वह किसी की उपेक्षा नहीं करता। वह किसी भी कांपते हुए याचक को बिना उठाए नहीं देखता। वह जिसने अपने प्रायश्चित के माध्यम से मनुष्य के लिए नैतिक शक्ति का एक अनंत भंडार प्रदान किया है, वह हमारी खातिर इस शक्ति का उपयोग करने में विफल नहीं होगा। हम अपने पापों और दुखों को उसके चरणों में ले जा सकते हैं क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। उसका हर रूप और शब्द हमारे आत्मविश्वास को आमंत्रित करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार हमारे चरित्र को आकार और ढाल देगा। पूरी शैतानी ताकत में एक भी आत्मा को पराजित करने की शक्ति नहीं है जो केवल विश्वास में खुद को मसीह पर छोड़ देता है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है, जैसा कि हम प्रतिज्ञा यशया 40:29 में पाते हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधम से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु कहते हैं, केवल अपने अधम को स्वीकार करो कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मलिनता और तुम्हारी सारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यह सब प्रतिज्ञा हम 1 यूहन्ना 1:9 और यिर्मयाह 3:13 तथा एजिकियल 36:25 में पाते हैं। हाँ प्यारो, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें क्षमा प्रदान करने चाहता है। वह हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए बुलाता है। वह केवल चाहता है कि हम अपने पाप को मान ले, पश्चाताप करें और उसके पास आकर क्षमा मांगे। वह हमारे हरेक पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है और जैसा वह हमें प्रतिज्ञा करता है प्रभु यीशु मसीह में, वह हमें शुद्ध बनाना चाहता है, हमारी सारी मलिनता को दूर करना चाहता है और इस तरह वह हमें पवित्र और शुद्ध अपने लिए एक सुगंध धूप के जैसा हमें तैयार करेगा। आइए हम अपने मनों को टटोले और अपने मनों को परमेश्वर के आत्मा के लिए दे दे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए और हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ले चले और हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें ताकि हम पाप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के आत्मा के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हम सबों को आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं पिता। हम अपने पापों को मान लेते हैं, तू हमारे कमजोरियों को जानता है, तू हमें बल देना चाहता है, तू हमें क्षमा देना चाहता है। पिता परमेश्वर, हमारे मनों से हर एक बुराई को दूर कर दे, हमारे मनों में तेरा पवित्र आत्मा आए और वास करे। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। हम सबों को तू क्षमा कर और स्वीकार कर और तेरे लिए शुद्ध और पवित्र बना, हमें तेरे राज के लिए पवित्र कर पिता परमेश्वर, कि हम सब मन और आत्मा में तेरे राज के लिए तैयार। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण करें, आमीन।
हे यीशु, तुझको मैंने दिल की गहराई से पुकारा, मेरे यीशु तुझको मैं दिल की गहराई से पुकारता, मेरे यीशु तुझको मैं दिल की गहराई।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।